नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की रचना आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना।
जी हाँ, और ये पुस्तक जैसा आपने कहा पूज्य गुरुदेव के उस महत्वपूर्ण क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है जो उन्होंने 1988 से 90 के दौरान रची थी।
हाँ, और उन्होंने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था।
बिल्कुल, और आग्रह भी किया था कि ये ज्ञान, ये विचार प्रकाश जन जन तक पहुंचे।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पुस्तक के माध्यम से गायत्री साधना के जो समर्थ पहलू हैं और जो उसका गहरा तत्व ज्ञान है उसे थोड़ा समझें।
जी, पुस्तक का सार यही है कि ये जो 24 अक्षरों का गायत्री महामंत्र है ये सिर्फ कोई मंत्र जाप नहीं है।
हाँ, उससे कहीं ज्यादा है।
बिल्कुल, ये भारतीय संस्कृति का कह सकते हैं नाभिक है, एक तरह से छोटा सा धर्मशास्त्र जो जीवन को परिष्कृत करने का पूरा तत्व ज्ञान समेटे हुए है।
मतलब केवल अक्षर दोहराना काफी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव ने यही जोर दिया कि तत्व ज्ञान को हृदयंगम करना, उसे जीवन में उतारना, वो असल साधना है।
मतलब ये ज्ञान जीने के लिए है।
सही कहा आपने, ये तो वेदों का सार है। लक्ष्य है मनुष्य के अंदर जो देवत्व छुपा है उसे जगाना, एक गरिमामय व्यक्तित्व बनाना।
पूज्य गुरुदेव ने इसे त्रिपदा गायत्री भी कहा है, यानी तीन पद तीन धाराएं। पहली धारा क्या है?
पहली है तत्सवितुर वरेण्यम, सविता यानी सूर्य, तो सविता के तेजस का वर्ण करना।
तेजस माने?
मतलब जीवन में ऊर्जा, प्रतिभा, शौर्य, एक तरह का साहस, वो धारण करना और अनीति के सामने न झुकना।
अच्छा, और फिर दूसरा पद भर्गो देवस्य धीमहि।
जी, ये है देवत्व का वर्ण, जीवन में शालीनता लाना, उदारता, देने की प्रवृत्ति, मतलब लेने की इच्छा से ऊपर उठना।
और तीसरे घ्यो यो न प्रचोदयात, ये तो बहुत ही प्रासंगिक लगती है आज भी।
हाँ, ये तो सामूहिक सद्बुद्धि की प्रार्थना है, केवल अपनी बुद्धि नहीं।
सही कहा।
बल्कि नह यानी हम सब की, पूरे समाज की, संसार की बुद्धि सन्मार्ग पर चले, इसकी प्रेरणा। पूज्य गुरुदेव ने इसे आध्यात्मिक त्रिवेली संगम कहा।
बहुत खूब। अच्छा, तत्व ज्ञान के अलावा मंत्र के अक्षरों के उच्चारण का भी तो महत्व बताया गया है, ध्वनि का।
निश्चित रूप से, जैसे वीणा या सितार के तार छेड़ें तो झंकार होती है ना।
हाँ,
वैसे ही मंत्र के अक्षरों का जब सही उच्चारण होता है तो मुख के अंदर, कंठ, तालु, इन सब पर दबाव पड़ता है।
अच्छा
जी, और ये दबाव हमारे सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा केंद्र हैं, षटचक्र हैं, ग्रंथियां हैं, उनको झंकृत करता है, जगाता है। इससे जो सुप्त शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है।
और यज्ञोपवीत के 9 धागों का क्या रहस्य है?
जी, वो 9 धागे असल में 9 सद्गुणों के प्रतीक हैं जिन्हें जीवन में धारण करना है।
9 सद्गुण कौन कौन से?
जैसे श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययता है, सुव्यवस्था, उदार सहकारिता, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये 9 गुण।
तो इन गुणों को जीवन में लाना ही असली गायत्री सिद्धि है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा कि उपासना अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ जीवन साधना, मतलब आत्मशोधन, चरित्र में उत्कृष्टता लाना, ये अनिवार्य है।
जैसे बिजली के 2 तार।
हाँ बिल्कुल, वही उदाहरण दिया उन्होंने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। तो उपासना और साधना दोनों जरूरी हैं। व्यक्तित्व अगर परिष्कृत नहीं है तो सिद्धि की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
गायत्री और यज्ञ का क्या संबंध बताया गया है? ये दोनों भी जुड़े हैं?
हाँ, इन्हें तो भारतीय संस्कृति के जनक जननी कहा गया है, प्रकृति और पुरुष की तरह एक दूसरे के पूरक हैं।
अच्छा,
दैनिक साधना में भी अग्नि का साक्षी रूप रहता है, दीपक या धूप के रूप में, और जब कोई विशेष अनुष्ठान होता है, पुरुष चरण होता है।
पुरुष चरण मतलब?
मतलब जब मंत्र जप की एक निर्धारित संख्या पूरी हो जाती है तो उसके बाद हवन का विधान है। यज्ञ की ऊर्जा गायत्री साधना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है।
जैसे लाउडस्पीकर आवाज को बढ़ाता है?
बिल्कुल वैसा ही। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में तो इस पर बाकायदा वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं।
एक और बहुत जरूरी बात पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट की, वो थी गायत्री की सार्वभौमिकता।
जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन मध्ययुगीन भ्रांतियों को तोड़ा कि यह साधना केवल कुछ पुरुषों के लिए या किसी खास वर्ण के लिए है।
हाँ, ये धारणा तो थी।
उन्होंने कहा गायत्री तो माँ है, मातृ रूपा, और माँ का अधिकार तो अपने सभी बच्चों पर होता है, चाहे वो पुरुष हो या नारी, किसी भी वर्ण का हो।
मतलब सभी के लिए समान रूप से सुलभ है।
बिल्कुल, और शांतिकुंज आंदोलन ने इसी सार्वभौमिकता को फिर से स्थापित किया। नारी शक्ति के सम्मान पर भी बहुत जोर दिया।
तो अगर कोई सामान्य रूप से साधना करना चाहे तो उसकी सरल विधि क्या है और उसका तत्व दर्शन?
सबसे सरल विधि है शांत चित्त से एकाग्र होकर गायत्री मंत्र का जप करना और ध्यान करना उगते हुए सूर्य का, सविता का, और ये भावना करना कि सूर्य की वो सुनहरी किरणें हमारे अंदर आ रही हैं और हमें ओजस्व दे रही हैं।
ओजस, तेजस, वर्चस।
जी, ओजस यानी शारीरिक कांति, तेजस यानी मानसिक प्रखरता और वर्चस यानी आत्मिक प्रभाव, ये तीनों बढ़ रहे हैं। पूजा में शुद्धता का ध्यान रखना और जो प्रतीक इस्तेमाल होते हैं, जल, अग्नि, अक्षत, पुष्प, उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश करना।
और विशेष अवसरों पर अनुष्ठान या शांति कुंज जैसे सिद्ध तीर्थों में साधना का महत्व और बढ़ जाता है।
हाँ, वहाँ के वातावरण और ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, साधना और गहरी होती है।
तो कुल मिलाकर पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना सिर्फ मंत्र जपना नहीं है।
नहीं,
ये तो व्यक्तित्व को निखारने, सद्गुणों को जीवन में उतारने और सबसे बढ़कर सामूहिक सद्बुद्धि को जगाने का एक पूरा पैकेज है, एक समग्र मार्ग है।
बिल्कुल सही, यज्ञ इसे और शक्ति देता है और ये सबके लिए खुला है।
और ये पुस्तक, जैसा आपने शुरू में कहा, उनके ज्ञान शरीर का ही प्रकाश है।
जी, जिसे वो सब तक पहुँचाना चाहते थे।
तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं, गायत्री मंत्र हमें व्यक्तिगत और सामूहिक सद्बुद्धि की प्रेरणा देता है। तो क्या आज के इस जटिल समय में, जहां इतनी सारी वैश्विक चुनौतियां हैं, हम इस सामूहिक सद्बुद्धि के सिद्धांत को ज्यादा सक्रिय रूप से, ज्यादा बड़े पैमाने पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।
निश्चित रूप से, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के संदर्भ में।